लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें ने अपने प्रथम आम दर्शन समारोह में भाग लेने वाले सबों का अभिवादन करते हुए कहा, इस आम दर्शन समारोह में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैं संत पापा फ्रांसिस द्वारा जयंती के अवसर पर शुरू किए गए यीशु हमारी आशा की विषय वस्तु को जारी रखना चाहूँगा।
Continuiamo oggi a meditare sulle parabole di Gesù.
आज हम यीशु के दृष्टांतों पर चिंतन करेंगे जो हमें आशा में बने रहने हेतु मदद करते हैं, क्योंकि वे हमें यह बतलाते हैं कि ईश्वर इतिहास में किस तरह कार्य करते हैं। आज मैं विशेष रूप से बोने वाले के दृष्टांत पर चिंतन करना चाहूँगा जो सभी दृष्टांतों के लिए एक तरह से भूमिका स्वरूप है। निश्चित रूप में यीशु के इस दृष्टांत में हम उनके संदेश देने के तरीके को पाते हैं जो हमें भी वर्तमान परिवेश में सुसमाचार घोषणा की एक बड़ी शिक्षा देती है। संत पापा लियो ने कहा कि हर दृष्टांत हमें प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी कहानी को बतलाता है। इसके अलावा दृष्टांत हमें जीवन के गहरे अर्थ की ओर इंगित करता है। यह हम में सवालों को उत्पन्न करता है। यह हमें केवल दृश्यमान चीजों तक सीमित होने को नहीं कहता है। कहानी के पहले या किसी चिन्ह जो हमारे सामने प्रकट किया जाता है, क्या मैं अपने में यह पूछ सकता हूँ, क्या मैं उस कहानी का अंग हूँ? वह चिन्ह मेरे जीवन में क्या कहती है? वास्तव में शब्द पैराबल यूनानी भाषा की क्रिया पैराबलिन से आती है, जिसका अर्थ के सामने फेंकना है। दृष्टांत मेरे सामने एक शब्द को फेंकता है जो मुझे प्रभावित करता और मुझे अपने से सवाल पूछने को प्रेरित करता है। संत पापा ने कहा कि बोने वाले का दृष्टांत विशिष्ट रूप से ईश्वर के शक्तिशाली शब्द और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रभाव के बारे में कहता है। वास्तव में सुसमाचार का हर शब्द हमारे लिए बीज की भांति है जो हमारे जीवन की भूमि में बोया जाता है। यीशु बहुत बार बीज को विभिन्न अर्थों में निशाने स्वरूप उपयोग करते हैं। संत मत्ती के अध्याय 13 में बोने वाले का दृष्टांत हमारे लिए कई छोटे दृष्टांतों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिसमें से कुछ खास रूप में भूमि में होने वाली बातों को प्रकट करते हैं। बीज और जंगली पौधे, राई का बीज, भूमि पर छिपाया गया धन। अतः यह भूमि क्या है? यह हमारा हृदय है। वहीं यह विश्व समुदाय और कलिस्य को भी निरूपित करता है।
La parola di Dio infatti feconda e provoca ogni realtà.
ईश्वर का वचन वास्तव में फलहित होता और हर सच्चाई को प्रकट करता है। शुरू में हम यीशु को अपना घर छोड़ते और एक भीड़ को अपने चारों ओर जमा करते हुए देखते हैं। उनका वचन मोहित और लोगों को आकर्षित करता है। लोगों की अपनी अपनी स्पष्ट रूप से अनेक परिस्थितियां हैं। यीशु का वचन सभी के लिए है, लेकिन यह प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरीके से काम करता है। यह संदर्भ हमें दृष्टांत के अर्थ को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। एक असामान्य बोने वाला बोने को जाता है, लेकिन वह इस बात की परवाह नहीं करता है कि बीज कहाँ गिरेंगे। वह बीज वहाँ भी बुनता है जहाँ फल लगने की संभावनाएं कम होती हैं, रास्ते पर, चट्टानों पर, कांटों के बीच। ऐसा करना श्रोता को आश्चर्यचकित करता है और उसे यह पूछने को प्रेरित करता है, ऐसा कैसे होता है। संत पापा ने कहा कि हम चीजों का हिसाब किताब करने के आदि हैं और कभी कभी यह जरूरी है, लेकिन यह प्रेम में लागू नहीं होता है। बीज बोने वाले द्वारा बीजों को बर्बाद करना एक चिन्ह है जो ईश्वर के प्रेम को हमारे लिए प्रस्तुत करता है। यह सही है कि बीज का भाग्य भूमि पर भी निर्भर करता है जहां उसका स्वागत किया जाता है, वह उपस्थिति जहां वह अपने को पाता है। लेकिन सर्वप्रथम इस दृष्टांत में हम इस बात को पाते हैं कि बोने वाला शब्द रूपी बीज को हर तरह की भूमि में बोता है, अर्थात हमारी सारी परिस्थितियों में जहां हम बहुत बार छिछले और खोए रहते हैं। कई बार हम अपने को उत्साह से भरा पाते हैं तो कई बार हम जीवन की चिंताओं में दबे रहते हैं, तो वहीं कई बार स्वेच्छापूर्वक उनका स्वागत करते हैं। ईश्वर अपने में विश्वास और आशा करते हैं कि कभी ना कभी तो बीज अंकुरित होंगे। उनका प्रेम हमारे लिए ऐसा ही है। वे हमें उत्तम भूमि होने का इंतजार नहीं करते हैं, लेकिन वे उदारता में हमें अपना बीज प्रदान करते हैं। शायद वे हमें देखते और भरोसा करते हैं इस चाह में कि हर दिन हम में अच्छी भूमि तैयार होगी। यह आशा को हम ईश्वर की उदारता और करुणा में जड़ित पाते हैं। संत पापा ने बीज का फल उत्पन्न करने की चर्चा करते हुए संत पापा ने कहा, यीशु हमारे जीवन के बारे में यह कहते हैं, यीशु शब्द हैं, वे बीज हैं, और बीज को फलहित होने के लिए मरना जरूरी है। अतः यह दृष्टांत हमें बतलाता है कि ईश्वर हमारे लिए अपने को व्यर्थ होने देते हैं। वे हमारे जीवन में परिवर्तन लाने हेतु स्वेच्छा से मरने के लिए तैयार हैं। चित्रकार वॉन गॉग की सुंदर चित्रकारिता सूर्यास्त में बोने वाले की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा लियो ने कहा कि सूर्य की चमकती रोशनी में बोने वाले का दृश्य मुझे उसकी मेहनत के बारे में कहता है, यह मुझे प्रभावित करता है। बोने वाले के आड़ में वॉन गॉग पकी फसलों को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए आशा का प्रतीक है। एक तरह से बीज ने फल उत्पन्न किए हैं। हम इसकी निश्चितता से अवगत नहीं हैं, लेकिन ऐसा होता है। इस दृश्य के केंद्र में यद्यपि बोने वाला नहीं है, वह बगल में खड़ा है, जबकि पूरी चित्रकारिता में सूर्य की प्रधानता व्याप्त है। शायद यह इस बात की याद दिलाने हेतु कि ईश्वर इतिहास का संचालन करते हैं, हालांकि वे हमसे दूर या अनुपस्थित दिखते हैं। यह सूर्य ही है जो धरती के ढेले को गर्म करता और बीज को पकाता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि जीवन की किस परिस्थिति में ईश्वर के वचन को हम अपने लिए पाते हैं, हम ईश्वर से कृपा की याचना करें, जिससे हम उनके वचन रूपी बीज का सदैव स्वागत कर सकें।
E se ci accorgessimo di non essere un terreno fecondo, non scoraggiamoci.
और यदि हम अपने में अनुभव करते हैं कि हम एक फलदायक भूमि नहीं हैं, तो हम अपने में निराश ना हों, बल्कि हम उन्हें अपने में कार्य करने हेतु निवेदन करें, जिससे हम बेहतर भूमि बन सकें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो चौदवे ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terra.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में अपने पहले आम दर्शन समारोह में गाजा में सम्मानजनक मानवीय सहायता के प्रवेश की अनुमति देने और शत्रुता को समाप्त करने के लिए भावुक अपील को नवीनीकृत किया। संत पापा ने कहा, मैं सम्मानजनक मानवीय सहायता के प्रवेश की अनुमति देने और शत्रुता को समाप्त करने की अपनी अपील को नवीनीकृत करता हूं, जिसकी हृदय विदारक कीमत बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों द्वारा चुकाई जा रही है। गाजा पट्टी की स्थिति लगातार चिंताजनक और दर्दनाक होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण IPC अकाल की चेतावनी दे रहा है। इसराइल द्वारा गाजा में सीमित संख्या में सहायता ट्रकों की अनुमति दिए जाने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय आलोचना बढ़ गई है, जिसमें इसराइल से अपने सैन्य अभियान को रोकने और प्रतिबंधों को कम करने का आह्वान किया गया है। अपनी अपील में संत पापा लियो 14वें ने संत पापा फ्रांसिस को भी विशेष रूप से याद किया। उन्होंने कहा, हम इस बैठक का समापन हमारे प्रिय संत पापा फ्रांसिस को, जो ठीक एक महीना पहले पिता के घर लौट गए, गहरी कृतज्ञता के साथ याद किए बिना नहीं रह सकते। संत पापा फ्रांसिस का निधन ठीक एक महीना पहले ईस्टर सोमवार 21 अप्रैल 2025 को हुआ था। उनके निधन की याद करते हुए आज संत मरिया मेजर महागिरजा घर में एक विशेष मिसा समारोह होगा, जिसे दिवंगत संत पिता ने अपने विश्राम स्थल के रूप में चुना है। इसके अलावा आज कासा सांता मार्ता में, जहां संत पापा फ्रांसिस ने रहने के लिए चुना था, कार्डिनल कॉनराड क्राइस की, संत पापा के दानदाता, उनकी याद में एक पवित्र मिसा चढ़ाया। आमदर्शन समारोह के समापन पर संत पापा लियो 14वें ने इतालवी भाषी तीर्थ यात्रियों, जिनमें पुरोहित भी शामिल थे, का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनसे आग्रह किया कि वे अपना जीवन यीशु और उनके वचन के ठोस चट्टान पर बनाएं, ताकि वे इसके साहसी उद्घोषक बन सकें। इसी तरह संत पापा ने धर्म बहनों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, प्रिय धर्म बहनों, मैं अपनी प्रार्थनाओं के साथ आपके साथ हूं, ताकि प्रभु आपकी प्रेरितिक प्रतिबद्धता को फलदायी बना सकें। इसके अलावा उन्होंने पल्ली समूहों का गर्मजोशी से स्वागत किया, उन्हें ईमानदारी से सुसमाचार का पालन करने, अपने परिवारों और हर दूसरे परिवेश में प्रमाणिक ख्रिस्तीय बनने के लिए प्रोत्साहित किया। और मंगलवार शाम को संत पापा लियो 14वें ने दीवारों के बाहर संत पौलुस महागिरजा घर का दौरा किया, जहां पारंपरिक रूप से संत पौलुस के अवशेष रखे गए हैं। संत पौलुस की कब्र के सामने प्रार्थना के एक पल के बाद संत पापा ने एक संक्षिप्त प्रार्थना सभा की अध्यक्षता की। संत पापा ने अपने प्रवचन में संत पौलुस द्वारा रोमियों को लिखे पत्र के एक अंश पर विचार किया, जिसमें तीन प्रमुख विषय हैं: अनुग्रह, विश्वास और औचित्य, जो परमाध्यक्ष प्रेरिताई को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है। संत पापा लियो ने कहा कि रोमियों को लिखे पत्र में संत पौलुस ने स्वीकार किया कि उसने मसीह का सामना केवल इसलिए किया क्योंकि मसीह ने पहले उससे संपर्क किया था उसका सामना, और उसके बाद में प्रेरिताई ईश्वर के पहले प्रेम का फल था जिसने उसे एक नए जीवन के लिए बुलाया, जबकि वह अभी भी सुसमाचार से दूर था। संत पापा लियो ने कहा, संत अगुस्टीन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, हम कैसे चुन सकते हैं जब तक कि हमें पहले नहीं चुना गया हो, हम तब तक प्यार नहीं कर सकते जब तक कि हमें किसी ने पहले हमसे प्यार न किया हो। संत पापा ने कहा कि हम ईश्वर की मदद के बिना अच्छा जीवन नहीं जी सकते, और यह वास्तविकता हर बुलाहट की जड़ में है। इसके बाद संत पापा ने संत पौलुस के बुलावे के विवरण पर विश्वास की भूमिका पर विचार किया। संत पापा ने कहा कि जब प्रभु दमिश्क के रास्ते पर प्रकट हुए तो उन्होंने पौलुस की स्वतंत्रता नहीं छीनी बल्कि उन्हें निर्णय लेने का अवसर दिया। संत पापा ने समझाया कि मुक्ति जादू से नहीं आती बल्कि अनुग्रह और विश्वास, ईश्वर के पूर्ववर्ती प्रेम और भरोसे एवं स्वतंत्र स्वीकृति के रहस्यमयी अंतर संबंध से आती है। संत पापा ने संत पौलुस के बुलावे के अंतिम पहलू पर विचार किया, जो औचित्य या पवित्रता में वृद्धि की प्रक्रिया थी। प्रेरितों के कार्यकलाप में वर्णन किया गया है कि कैसे येसु के दर्शन के बाद पौलुस ने ख्रिस्तियों को सताना बंद कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया था। संत पापा ने विश्वासियों से इस तरह के प्रेम को दिखाने में प्रतिस्पर्धा करने का आग्रह किया, जिसके कारण संत पौलुस ने खुद को दूसरों के लिए इतना समर्पित कर दिया कि अंततः उन्हें शहीद होना पड़ा। संत पापा लियो 14वें ने संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के एक उद्धरण के साथ अपने प्रवचन को समाप्त किया, ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, यह हमारे जीवन का महान सत्य है, यही वह है जो बाकी सबको सार्थक बनाता है। संत पापा लियो ने कहा कि यह अंतर्दृष्टि हर मिशन का आधार है, जिसमें संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी और संत पौलुस के प्रेरितिक उत्साह के उत्तराधिकारी के रूप में मेरा अपना मिशन भी शामिल है। और संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लौदातो सी की 10वीं वर्षगांठ से पहले संत पापा लियो 14वें ने रियो दे जेनेरियो के पोंटिफिकल कैथोलिक विश्वविद्यालय में एकत्रित विश्वविद्यालयों के नेटवर्क को एक वीडियो संदेश भेजा। जनसंपर्क को संबोधित करते हुए संत पापा लियो 14वें ने कोप 30 की तैयारी में चिंतन के धर्म सभा कार्य में संलग्न होने की नेटवर्क की प्रतिबद्धता पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने विश्वविद्यालयों द्वारा सार्वजनिक ऋण और पारिस्थितिक ऋण के बीच संभावित सामंजस्य पर विचार करने के प्रयासों को स्वीकार किया, और 19 मई को वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने शांति का मार्ग फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत पुरस्कार स्वीकार किया। न्यूयॉर्क में आयोजित समारोह में कार्डिनल पारोलिन ने पुरस्कार के लिए अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे राज्य सचिवालय की ओर से स्वीकार किया, जो हमारी दुनिया में न्याय को बढ़ावा देने के संत पापा के अथक प्रयास के लिए कार्य करता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।